प्रेम विद्यापति के काव्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। वे पूर्णतः प्रेमिक कवि थे, सौंदर्योपासक कवि, बिना प्रेमी हुए रह ही नहीं सकता। वस्तुतः सौंदर्य की परिभाषा ही यह है। सुंदर उसी वस्तु को कहा जाता है जो प्रेम की वस्तु हो सके। जिस वस्तु के प्रति प्रेम न हो वह सुंदर नहीं हो सकती, अथवा कोई सुंदर वस्तु बिना प्रेम की वस्तु बने रह नहीं सकती। गिलबर्ट मरे ने लिखा है कि सौंदर्य वह है जो देखा जाकर प्रेम का विषय बनता है। प्रेम मनुष्य की वैयक्तिक संपत्ति है, किंतु यह प्रेम जब कविता या कला का माध्यम से व्यक्त होता है तो सार्वजनिक हो जाता है। इसलिए रेबेका वेस्ट का कहना है कि प्रेम और कला के बीच यही संबंध है कि प्रेम जिस व्यक्ति की थाती बनाए है, कला उसे विश्व की निधि बना देती है। प्रेम मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शुक्ल जी की भाषा में कहें तो जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर की उत्साह तक बराबर फैली दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। संसार के कई महापुरुषों के जीवन में इस प्रेम ने ही प्रेरणा का कार्य किया है। प्रसिद्ध कवि दांते इस प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति कहा करते थे। उन्होंने कहा है कि मैं वह हूँ जिसके जीवन में प्रेम यदि प्रोत्साहन दे तो लिखता हूँ। प्रेम मेरे अंतर्मन में जैसे कहता है, मैं वैसे ही उसे व्यक्त करता हूँ। राधा और कृष्ण के महान प्रेम को समझने के लिए हमें विद्यापति के उस विश्वास को समझना होगा जिसे उन्होंने प्रेम में अर्जित किया था। बिना प्रेरणा के कोई काव्य नहीं होता। काव्य तो क्या, संसार का कोई भी बड़ा कार्य महती प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। प्रेरणा हमेशा सांसारिक परिचित वस्तु से उत्पन्न होती है, किंतु यह प्रेरणा हृदय में एक ऐसे भाव स्रोत को जन्म देती है जो हमारे लिए एकदम नया और शक्तिपूर्ण होता है। प्रेम की इस प्रेरणा को शैली कविता की प्राणधारा कहा करता था। शैली ने लिखा है कि कविता कोई तर्क नहीं है कि इच्छा की और प्रक्रिया शुरू हो गई। कविता के सृजन के समय कवि मस्तिष्क बुझे हुए कोयले की तरह रहता है। बस हवा का एक झोंका आया, एक अनजाने प्रभाव से वह उसे जगा जाता है। यह शक्ति हृदय के भीतर से उठती है, फूल के रंग की तरह जो कविता को जन्म देकर खुद खत्म हो जाती है। क्या यह प्रेरणा कवि के मन में हमेशा के लिए बनी रहती है? शैली कहता है नहीं, सृजन की प्रक्रिया में यह बहुत कुछ समाप्त होने लगती है, और संसार की सर्वश्रेष्ठ कविताएं प्रायः वही हैं जिनमें प्रेरणा के मूल रूप की धूमिलतम छाया ही शायद बची रह गई है। प्रेम की महान कविताओं को पढ़ने वाले सहस्त्रों पाठकों को क्या पता कि इस मामूली से अनजान प्रेरणा ने कवि के मन को इतने महत् कार्य के लिए प्रेरित किया था। संसार के अन्य श्रेष्ठ कवियों की तरह विद्यापति के विषय में भी किंवदंती चलती है। कहा जाता है कि राजा शिव सिंह की सुंदर पत्नी रानी लखिमा से विद्यापति का प्रेम था। लखिमा बहुत सुंदर थी, साथ ही वे उच्च कोटि की कवित्री और काव्य मर्मज्ञा भी थी। कुछ संस्कृत श्लोक लखिमा ठकुरानी की विरह गीत नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार के एक श्लोक में विरह की व्यथा का चित्रण किया गया है। चक्रवाल कमललाल को तोड़कर खाना चाहता है, किंतु कमल तंतुओं को चंद्रमा की किरण समझकर नहीं खाता। कमल के पत्रों पर पड़े हुए बूंदों को तारा समझकर प्यासे होने पर भी उन्हें नहीं पीता। कमलों की छाया, काली छाया में मंडराते हुए काले भवनों को देखकर उसे संध्या का आभास होने लगता है। इस प्रकार कांता के विश्लेष की आशंका मात्र से ही चक्रवाक दिन को रात से मानता है। यह श्लोक रियर्सन ने लक्ष्मी ठकुरानी के विरह गीत शीर्षक से इंडियन एंटीक्वेरी में प्रकाशित कराया था। सहजिया संप्रदाय के वैष्णव भक्त विद्यापति को अपने सात श्रेष्ठ रसिक भक्तों में एक मानते हैं। इस सातों में प्रथम विल्व मंगल हैं, जिन्होंने यवनारंभ में चिंतामणि वेश्या से प्रेम किया था। बाद में विरक्त होकर बहुत बड़े भक्त हुए। इनका विश्वास है कि इसी तरह विद्यापति के राजा शिव सिंह की पत्नी लखिमा से गुप्त प्रेम था। बंगाली कवि नरहरिदास ने तो अपने एक पद में लिखा है कि लखिमा राधा की प्रतिमा है। जब वो आंखों के सामने होती है तब कविता शत धाराओं में फूट पड़ती है। लक्ष्मा रूपिणी राधा इष्ट वस्तु जाओ, जबे देख कविता स्फुर शत धार। संभव है लक्ष्मा की कहानी पूरी जनश्रुति या कपोल कल्पना ही हो, यह भी संभव है कि इस कहानी में कुछ सत्य भी हो। जो भी हो, इतना सत्य है कि पदावली के सर्वश्रेष्ठ गीत लखीमा और उनके पति शिव सिंह को समर्पित है। संयोग श्रृंगार के अत्यंत मधुर गीतों में विद्यापति ने लखीमा को साक्षी की तरह उपस्थित किया है। श्री विमान बिहारी मजुमदार ने लिखा है कि नोटेड कामा पदावली की 198 पदों में शिव सिंह लखीमा का नाम आता है। लखीमा का नाम बहुत से पदों में शिव सिंह के साथ आया है, कुछ में केवल शिव सिंह का। ये नोटेड कामा कुछ पदों में ऐसा भाव है जैसे विद्यापति इन पदों को शिव सिंह और लखीमा के सामने पढ़ रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि शिव सिंह गाते हैं। राजा शिव सिंह गौ लयन लखीमा देवी उदार। इन पदों से एक बात का अवश्य पता लगता है कि विद्यापति के राजा रानी के साथ सख्य भाव का संबंध था, अन्यथा इस प्रकार के श्रृंगारिक बातें इतने स्पष्ट ढंग से कहना कठिन होता, क्योंकि प्रत्येक पद में श्रृंगार चेष्टाओं का वर्णन करके कवि ने कहा है कि इस रस को राजा शिव सिंह और लखीमा जानते हैं, या लखीमा के रमण राजा शिव सिंह जानते हैं, या वे राजा शिव सिंह जानते हैं जो लखीमा के साथ रमण करते हैं। प्रेम की प्रेरणा से मेरा यह तात्पर्य नहीं था कि मैं विद्यापति के जीवन के गुप्त प्रेम व्यापारों को स्पष्ट करूं। यह न आवश्यक है, न उचित और न तो संभव है। प्रेम की प्रेरणा का मतलब है प्रेम के विषय में कवि के विचार, वह प्रेम को किस दृष्टि से देखते हैं, प्रेम के विषय में उनकी क्या विश्वास हैं, क्या धारणाएं हैं। प्रेम के विषय में प्रत्येक कवि की भिन्न भिन्न धाराएं होती हैं। बहुत से उसे केवल चिंतन का विषय मानते हैं, बहुत से उसे वायवी या काल्पनिक कहते हैं, बहुतों के लिए इंद्रिय तृप्ति ही प्रेम है। इस प्रकार की मान्यताओं के कारण दोनों प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के बारे में उनकी धारणाओं में अंतर आता है। विद्यापति चाक्षुष मैत्री या प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम का वर्णन अवश्य करते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक क्षण के लिए एक दूसरे के रूप को देखकर या आकृष्ट हो जाते हैं, इसे तारक मैत्री कहते हैं। शुक्ल जी ने इस प्रकार प्रथम दर्शन के प्रेम को साहचर्य जनित प्रेम से हीन कोटि का बताया है। विद्यापति स्वयं प्रेम को साहचर्य का ही परिणाम मानते हैं। प्रेम के विषय में विद्यापति की धारणाएं इतनी ऊंची हैं, वे इसे इतनी महत्व वस्तु मानते हैं कि वे इसे केवल मानसल इंद्रिय तृप्ति का साधन ही नहीं कह सकते। मैं यह नहीं कहता कि विद्यापति प्लेटोनिक प्रेम के पक्षपाती थे, बिल्कुल नहीं। वे आंगिक मिलन के सुख की भी कम अभ्यर्थना नहीं करते, किंतु यह सब शरीर व्यापार है, प्रेम यहीं तक सीमित नहीं है। विद्यापति कहते हैं कि प्रेम तो फूल का पौधा है, इस फूल को गोपाल ले आए और फुलवारी में लगा दिया। प्रेम पूर्ण वार्ता के जल से निरंतर यह सींचा गया, शील और मर्यादा के घेरे बांध कर इसकी रक्षा की गई। फूल का नन्हा पौधा प्राण के खम्भे पर अवलंबित रहा और एक दिन इसमें अभिनव प्रेम का पुष्प फूला। जो अमूल्य था, लाखों स्वर्ण मुद्राएं इसके सामने कुछ नहीं थी। वह अत्यंत सुंदर पुष्प और भी विकसित हुआ, तब दो जीव जो अलग अलग थे सदा के लिए एक हो गए। इस फूल को सदा निंदा और असूया के कीड़ों से बचाया गया, साहस ने इसको फल दिया। फूल एक फुलवारी लाऊल मुरारी, जतने पटाऊल सुवचन वारी, चौदिस वानल सीलक यारी, जीवय अवलंबन करु अवधारी, ततहु फूलल फूल अभिनव प्रेम, उस मूल लहे न लाखौ हेम, अति अपरूप प्रेम परिणत भेल, दुई जीव अछत एक भय गेल, पिसुन कीट नहीं लागल ताहि, साहस फल देत विहि निर्वाही, विद्यापति का सुंदर सेहु, करे जतन फलमत होय जेहु। संयोग के दिन मुझे विद्यापति मिलन की नाना मुद्राओं के मादक वर्णन से अपने काव्य को आनंदातिरेक से भर देते हैं। वही विरह के दिनों में सारी सृष्टि को आठ आठ आंसू रुलाने की क्षमता भी रखते हैं। आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि विरह के गीतों से में से अधिकांश किसी राजा या आश्रयदाता को समर्पित नहीं है। विद्यापति इन गीतों के स्वयं भोक्ता और साक्षी हैं। इन गीतों में विद्यापति की आत्मा रोती है और वे बार बार प्रिय मिलन की आशा बांध कर अपनी आत्मा में रोते हुए विरहणी को चुप कराते हैं। संभवतः ये गीत उस समय लिखे गए जब वे किसी राजा के आश्रम में न थे, दिन दुख के थे, दरबारी वैभव और आमोद प्रमोद से वे घिरे न थे। इस प्रकार की परिस्थिति शिव सिंह की मृत्यु के बाद पैदा हुई थी। बहुत दिनों तक वे अपने सखा राजा को मृत्यु से उदास और खिन्न रहे होंगे। इन्हीं दिनों उन्होंने विरह के ये गीत लिखे थे। पता नहीं इस प्रकार के विरह गीतों के निर्माण में लखीमा की स्मृतियों ने कितना योगदान दिया, किंतु इसमें शक नहीं कि ये गीत कवि की अंतरात्मा की आवाज़ है। बहुत से लोग विद्यापति के संयोग श्रृंगार वाले पदों को देख कर ही उनके स्वभाव का विश्लेषण कर देते हैं। वे कहते हैं कि राधा बड़ी विदग्धा है, कामुक है। विद्यापति घोर श्रृंगारिक है, किंतु विरह ने विद्यापति की आंखों से कितना आंसू गिराया इसे कोई नहीं देखता। रविंद्रनाथ चंडीदास और विद्यापति के प्रेम गीतों की तुलना करते हुए लिखा है कि विद्यापति सुख के कवि हैं और चंडीदास दुख के। विद्यापति विरह में कातर हो उठते हैं और चंडीदास को मिलन में भी सुख नहीं। विद्यापति जगत में प्रेम को ही सार मानते हैं और चंडीदास प्रेम को ही जगत समझते हैं। विद्यापति भोग के कवि थे, चंडीदास सहन के। वस्तुतः इस तरह का कथन विद्यापति की उन कविताओं पर लागू होता है जो संयोग श्रृंगार की है। डॉक्टर विमान विहारी मजुमदार ने ठीक लिखा है कि इनोटेड कामा पदों में केवल 30 पद विरह के हैं। ऐसे ही पदों को देखकर रविंद्रनाथ ने ऐसा राजनामांकित किया था। राज्यसभा के वातावरण में जो पद नहीं लिखे गए थे उन्हें कवि ने अपने दुख के दिनों में अकेले बैठकर रचा था। उसमें गंभीरतर वेदना, निबिड़तर आनंद और अतीन्द्रिय अनुभूति की छाप है। इनोटेड कामा विद्यापति की विरह गीत इतने कारणों और व्यथा से भरे हैं कि उन्हें खाली भोग के गीत कहना उनके साथ अन्याय होगा। राधा अपने विरह में कृष्ण के सम्मेलन की आकांक्षा से पीड़ित अवश्य है, किंतु उसके हृदय की स्वाभाविक वेदना को कातरता कहना उसका अपमान करना है। राधा ऐसी कातर नहीं है, वह तो यहाँ तक कह सकती है, माधव हमर रहन दुर्देश, केओ न कहें सखी कुशल सनेश, युग युग जीवत वसत लाख कोश, हमर अभाग हुनक नहीं दोष, हमर कर्म भेल विधि विपरीत, तेजलनी माधव पुरबिल प्रीत, हृदयक वेदन बाण समान, आनक दुख आन नहीं जान। कृष्ण कहीं भी रहें, दुख में रहें सुख में रहें, दुख को सह लेंगे। यह हमारा दुख, हमारे कर्मों का परिणाम है, फिर उनका दोष क्या। सूरदास की राधा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जहाँ आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, वहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती, लोभ और प्रीति। विद्यापति इसी तरह के प्रेम का अभ्यर्थन करते हुए करते हैं, सुजक प्रेम हेम समतूल, देहित कनक द्विगुण होय मूल, टूटित ना है टूट प्रेम अद्भुत, जैसन बड़े मृलाल कसूत। यह प्रेम कनक की तरह मूल्यवान है जो विरह की अग्नि में तप तप कर शुद्ध हुआ है। यह प्रेम ऊपर से टूटा हुआ दिखाई पड़ सकता है, परिस्थितियां दो व्यक्तियों को अलग कर सकती हैं, किंतु जैसे कमल नाल के टूट जाने पर भी उसके तंतु नहीं टूटते, वैसे ही यह प्रेम कभी नहीं टूटता। विद्यापति निराशावादी कवि नहीं थे। बहुत से लोग उनके स्तुतिवर्ग गीतों में आत्मग्लानी के शब्दों को देखकर यह आरोप करते हैं कि विद्यापति जीवन के अंतिम अवस्था में निराशावादी हो गए थे। यह सत्य है कि इन पद्यों में विद्यापति के मन की घोर कातरता दिखाई पड़ते हैं। जैसे निम्न पद में देखिए, ततल सैकतवार बिंदु सम सुत भित रमन समाज, तुहे तो विसारि मन ताहि समर्पिनो, अब मजहो व कोन काज, माधव हम परिणाम निराशा, तुह तो जगतारण दान दयामय, अतय तो हर विश्वासा, अवधि जन्म हम नीद गया, गमायन जरा सुसुप्त दिन गेला, निधुवन रमन रभस संग मातनो, तुहे तो भजब कौन बेला। इस प्रकार के पदों में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, कवि का आत्मनिवेदन, जो उस काल के भक्त कवियों की परिपाटी थी, अपने को अत्यंत गिरा हुआ, पतित, नीच और कदर्रे बताकर भगवान की दया के लिए याचना करना, एक प्रकार से भक्त कवियों के लिए कवि प्रणोक्ति है, कवि परिपाटी। शूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने इस प्रकार की आत्मग्लानि भरी पड़ी है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने मानस जीवन के शिशुकाल से जरा काल तक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का कदर्दना भरा चित्रण प्रस्तुत किया है और अंत में कहा है कि भगवान इस प्रकार के कृतघ्न नीच पतित जीव का तुम्हें उद्धार कर सकते हो। सूर्य के विनय के पदों के घिहियाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य की ताड़ना विदित है ही। इस प्रकार की स्तुति पर कविताएं, चाहे वह गंगा की वंदना में हो या गणेश की, देवी की, शंकर की, जानकी की, राधा की या दुर्गा की, सब में यही कातरता दिखाई पड़ती है। यह कातरता जीवन की वास्तविक निराशा का परिणाम नहीं है, बल्कि देवता की महिमा और वक्त की असहायता की रूढ़ अभिव्यक्ति मात्र है। इसे कवि के जीवन के यथार्थ से संबंधित करने का प्रयत्न अनुचित है, क्योंकि सौंदर्य और प्रेम का वास्तविक कवि कभी निराशावादी नहीं हो सकता। वाचा भगवान के सामने दीनता भरी स्तुति करता हुआ, दुनियादारी का तगाजा पूरा करता हुआ और निरंतर सौंदर्य और प्रेरणा की प्रेम की प्रेरणा से अनुचालित होता रहा है। विद्यापति के सम्मुख संप्रदाय या धर्म का कोई विशेष महत्व न था। आलोचकों ने इस प्रश्न को सुलझाने के लिए विद्यापति शैव थे या वैष्णव लंबे लंबे तर्क दिए। इन तर्कों के अंबार में यह ढूंढना तो मुश्किल हो ही गया कि विद्यापति क्या थे। जो बातें स्पष्ट सामने थी वह भी कोहिल जाल में छुप गईं। विद्यापति ने प्रेम के बहुत ऊंचे गीत लिखे हैं। उनके लिए मनुष्य से बड़ा और कोई पदार्थ नहीं है, शारीरिक सौंदर्य से बड़ी और कोई निधि नहीं है। आलोचक विद्यापति की रचनाओं को इन्हीं के आधार पर समझना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वे शैव हैं या वैष्णव, क्योंकि इन आलोचकों की यह मान्यता है कि यह विद्यापति शैव थे तो राधा कृष्ण के प्रेम गीत निश्चित ही श्रृंगारिक है, क्योंकि कोई शैव भला वैष्णव देवताओं के बारे में भक्तिपूर्ण पद क्यों लिखेगा। इस पद प्रश्न पर आगे विचार किया गया है। इस स्थान पर विद्यापति की धार्मिक मान्यता के विषय पर कुछ भिन्न दृष्टि से विचार करना चाहता हूँ। कवि या लेखक के रचनाओं में धर्म का तत्व दो प्रकार से प्रतिफलित होता है। या तो वे रचनाएं निश्चित धर्म के विषय में हो, अर्थात किसी विशेष प्रकार के धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त लिखी गई हों, जैसे प्राकृत भ्रंश में लिखे हुए बहुत से जैन काव्य या संस्कृत में लिखे हुए हिंदू धर्म ग्रंथ आदि। इन रचनाओं में धर्म केंद्रीय शक्ति है, बाकी वस्तुएं उसी का अनुगमन करती हैं। कविताएं धर्म का विषय एक और भी तरीके से बनती हैं। धर्म उन कविताओं में मुख्य नहीं होता, उनमें मनुष्य के बहुत ऊपर उठे हुए मानसिक धरातल का चित्रण होता है। मनुष्य के मन का उच्चतम धरातल जब कवि के काव्य में अभिव्यक्ति पाता है तो उसे आलोचक मधुमती भूमिका की संज्ञा देते हैं। इस मधुमती भूमिका को प्राप्त कवि की रचनाओं में विश्वजनीन मानव धर्म अभिव्यक्ति पाता है। यह एक स्थिति है जिसमें कवि धर्मों के संकुचित घेरे तोड़कर देश काल निरपेक्ष साहित्य की सृष्टि करता है। इस साहित्य में किसी भी धर्म की मूल बातें अर्थात मानवीय जीवन के अभ्युदय और श्रेयस की बातें दिखाई पड़ सकती हैं। विद्यापति की सभी कविताओं में तो नहीं, किंतु अधिकांश में इसी धर्म की छाया है, यानी मानव धर्म की। राधा और कृष्ण किसी एक जाति या देश के नहीं हैं और न तो प्रेम की किसी स्थूल सीमा में आबद्ध हो सकता है। प्रश्न हो सकता है फिर इन कविताओं पर वैष्णव भक्ति का बिल्ला लगाना कहाँ तक उचित है। विद्यापति ने यह बिल्ला नहीं लगाया, उन्होंने अपनी कविता को वैष्णव भक्ति का काव्य नहीं कहा, क्योंकि उनकी कविता में व्यक्त मानव हृदय वैष्णव भक्त के हृदय से ज़्यादा साम्य रखता है। इसलिए परवर्ती काल में ये कविताएं वैष्णव भक्तों द्वारा स्वीकृत होकर कीर्तन का विषय बन गई। रागानुगा भक्ति और सांसारिक प्रेम में प्रकार का अंतर नहीं होता, केवल उद्देश्य का अंतर है। जड़ोन्मुख होकर जो भावना प्रेम की संज्ञा पाती है वही चिंदोन्मुख होकर भक्ति कही जाती है। अत्यंत श्रृंगारी कविता की भी कभी कभी शुद्ध चित्त में भगवान के प्रति अनन्य अनुराग जगाने का कारण बन जाती है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सुना तो घंटों व्याकुल रहे। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु भवंतरलोक प्रविष्ट हुए। कृष्णराज ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जगन्नाथ क्षेत्र के वैभव और कोलाहल से अतृप्त होकर प्रभु वृंदावन की कामना कर रहे थे। उसी समय इस श्लोक को उन्होंने भावावेश में दोहराया। यह श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना के अर्थ ना बूझे इहार, पूर्व येन कुरुक्षेत्रे सब गोपी गण, कृष्णेर दर्शन पाया आनंदित मन, जगन्नाथ देखे प्रभुर से भवा उठिल, से भाविष्ट हैया धुआ गयो आयिल, अवशेषी राधा कृष्णा कैला निवेदन, से तुम से आमी से नव संगम, तथापि आमार मन हरे वृंदावन। वृंदावन उदय कराह यापन चरण, यहाँ लोकार्जुन हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पवन भृंग पिगनाद सुने। भक्ति और सांसारिक प्रेम दोनों के ही परिणत अवस्था में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। उसमें भक्ति या प्रेमी अपने हृदय में नाना प्रकार के सुख दुख मिश्रित भावों का अनुभव करते हैं। इन परिस्थितियों का सफल चित्रण बहुत थोड़े कभी कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में मनुष्य का मन नैसर्गिक सहज स्थिति में होता है, जिसमें कलमश नहीं होता, संकोच और अहम की क्षुद्र सीमा नहीं होती। इस प्रकार के वर्णन में लौकिक प्रेमगत परिस्थितियों से भक्त की कई प्रकार की स्थितियों का साम्य दिखाई पड़ता है। विद्यापति के प्रेम गीतों में यदि किसी शव या शाक्त या सूफी साधक को अपनी पद्धति का कुछ साम्य नजर आए तो उसमें विद्यापति को या उन्हें श्रृंगारिक बनाने वाले आलोचक को क्या आपत्ति हो सकती है। वैष्णव रागानुगा भक्ति से इनका ज्यादा साम्य है। विद्यापति प्रेम और विरह के अत्यंत गंभीर वातावरण में रहते हुए भी काफी विनोदी और आमोदप्रिय जीव थे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ कवि प्रेम का गान लिखते हुए विरह की अवस्था में या असफल प्रेम की स्थिति में इतने गमगीन हो जाते हैं, ऐसा मुंह फुलाए रहते हैं कि उनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। वर्तमान युग के बहुत से कवि इस असाध्य रोग के शिकार हैं। प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। प्रेम के कुछ ढंग ढर्रे का हो तो भी कोई बात नहीं हुई, वह प्रेम न होकर केवल प्रलाप होता है। वाताधिका कवय भवंती को वे चरितार्थ करते हैं। विद्यापति इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। रूप देखा तो ढक कर देखा, प्रेम किया तो अस्तित्व भूल कर किया, विरह में पड़े तो 100% व्यथा को झेलने के लिए तत्पर रहे, किंतु जब दुनिया को देखकर कुछ उस पर सोच विचारा तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर नजर गई कि उन्होंने उसके वर्णन से पाठकों को हंसाकर लोटन कबूतर बना दिया। तरुणी नारी की सगाई किशोरी से हुई तो विद्यापति ने न केवल उस युवती के मन का आक्रोश व्यक्त किया, बल्कि इस प्रकार की शादी करने वाले कन्या पिता के पास संदेशा भी भिजवाया कि हाल की ब्याई एक गाय भी भेज दो ताकि लड़का जमाई का पालन पोषण हो सके। और दूसरी ओर नवयुवती की शादी किसी बूढ़े वर मुशाय से होने लगी तो भी विद्यापति अपना गुस्सा रोक न सके और शादी ब्याह ठीक कराने वाले उस घटक की दाढ़ी पकड़कर घसीटवाने से बाज न आए। विनोद का रंग कभी कभी काफ़ी चढ़ जाता था तो देवी देवताओं की शादियों का अच्छा मसाला मिल जाता। अगर शंकर और दुकला वेष्ठित कुमारी गौरी की शादी से मनोरंजक और विषय क्या होगा। विद्यापति ने ऐसी परिस्थितियों में पूरी बारीकी के साथ एक एक रूढ़ी का करारा व्यंग्य किया। वैसे मिथिला में शादी ब्याह की रंगत कुछ अनोखी रहती भी है, तब भी थी, और विद्यापति ने उसे खूब अच्छी तरह प्रयुक्त भी किया। राधा कृष्ण के प्रिय प्रसंगों में भी इस कौतिक प्रियता का अभाव नहीं। वैसे वह विनोद कुछ लोगों के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उसके लिए काम करा विदग्ध होना पहली शर्त है। अब तक मैंने विद्यापति की कुछ एक वैयक्तिक विशेषताओं का उल्लेख किया जिसे उन्होंने स्वयं साधना से अर्जित किया था, अथवा वे उनके व्यक्तित्व की सहज विशेषताएं थीं, किंतु बहुत सी बातें विद्यापति के व्यक्तित्व में उस युग विशेष की देन है जिसमें वे पैदा हुए थे। बहुत सी चीज़ें उन्हें परंपरा से मिली, इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हुए, कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को घटाया। राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य मीमांसा के 8वें प्रकरण में कवि के लिए पठनीय शास्त्रों का विवरण देते हुए कामशास्त्र का भी उल्लेख किया है। कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र और अर्थशास्त्र को एकत्र रखा है। इसे उन्होंने राज सिद्धांत त्रय कहा है। श्रुति स्मृत इतिहास पुराणम प्रमाण विद्या समय विद्या राज सिद्धांत्रयी काव्य मीमांसा अष्टमाध्याय पृष्ठ संख्या 85। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के आसपास वात्स्यायन ने कामसूत्र का निर्माण किया। उसके बाद और भी कई आचार्यों ने शास्त्र के पल्लवों ने विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। रति रहस्य, अनंगरंग, नागर सरस आदि ग्रंथों में इस शास्त्र का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। कामशास्त्र में 2 वस्तुओं पर बहुत ध्यान दिया गया, कामणी लक्षण और कन्या विष्ब्रह्मण। कामणी लक्षण का निर्माण केवल कामशास्त्र का विषय नहीं था, इसके निर्माण में सामुद्रिक शास्त्र के आचार्यों का भी बड़ा हाथ था। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही मतों को मानने वाले आचार्यों ने अपने अपने ढंग से सामुद्रिक शास्त्र लिखे। हिंदुओं के सामुद्रिक शास्त्र प्रसिद्ध हैं ही, जिन लोगों ने भी सामुद्रिक पर कई ग्रंथ लिखे। जैनियों के 5 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पाटण के राजमंत्री श्री जगदेव रचित सामुद्रिक तिलक, परशुचंद्र का हस्तकांड, अज्ञात संज्ञक किसी लेखक का अरहत चूड़ामणि सार, उपाध्याय मेघ विजय का हस्त संजीवन तथा किसी अज्ञात विद्वान द्वारा प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र आदि ग्रंथ जैन आचार्यों के कामशास्त्र विषयक अध्ययन के परिणाम हैं। ये 5 पुस्तकें 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखी गई। सामुद्रिक शास्त्रों में नर नारी के लक्षणों पर काफ़ी विस्तार से विचार किया गया। इन लक्षणों ने कामशास्त्र को भी प्रभावित किया। नारी के नैक्षिक सौंदर्य के सभी लक्षण इन्हें सामुद्रिक शास्त्रों के आधार पर तैयार किए गए। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी तथा देवसत्वा, गंधर्वसत्वा, यक्षसत्वा, मनुष्यसत्वा आदि नारियों के भेद और लक्षण सामुद्रिक शास्त्रों कामशास्त्रों में प्रायः समान है। इतना नहीं, नारी के वर्ण, गंध, स्वर, गति, लामणे, पांव, उंगुलियां, नख, चरण, जान, उर, कटि, नितंब, वास्ति, नाभि, उदर, त्रिवली, वक्षस्थल, उरूज, हंसली, कंधे, हाथ, ग्रीवा, चाबुक, कबोल, मुख, अधर, दांत, जिह्वा, हास्य, नाक, नेत्र, भौं, कान, ललाट, कपाल, किश आदि अंगों के बारीक से बारीक लक्षण नारियों के विभिन्न प्रकारों के अनुसार नाना प्रकार के बताए गए। कामशास्त्र में मध्य प्रदेश, मालवा, सिंध, पंजाब, गुजरात, केरल, मद्रास, बंगाल, उत्कल, कोशल आदि की नारियों की प्रवृत्ति और उनकी कामाचरण के विषय में विचार किया गया है। कन्या विश्रम्भरण प्रकरण के अंतर्गत नारी के सौंदर्य की प्रशंसा, प्रणयोपचार आदि की विधियां बताई गई। बाला, नवोढ़ा, मुग्धा, प्रौढ़ा आदि के प्रणयोपचार के अंतर स्पष्ट किए गए हैं। नागरजनों के वर्णन, उनके दैनंदिनी कामक्रम, विलास और प्रसाधन के नाना उपकरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इन शास्त्रों को देखने से मालूम होता है कि नायिका भेद की बीजांकुर यहाँ वर्तमान है। यही नहीं, इसके अंदर प्रणय के नाना रूपों के बारे में रूढ़ियाँ भी स्थापित हो चुकी थी। इन शास्त्रों का प्रभाव बहुत गहराई से पड़ रहा था। कामशास्त्र का मूल उद्देश्य कुछ और ही था। वत्सा ने लिखा था कि काम अर्थ और धर्म दोनों का साधन है। फलभूतस्य धर्मोर्थयोश्च कामसूत्रम्। वात्स्यायन ने विवाह को आवश्यक बताया और शास्त्र को वर्णाश्रम की मर्यादा और सीमा में घेर कर रखा था। कामस्य तुर्ष वर्षेणु सर्वतः शास्त्रस्य न पूर्वयाम प्रपूज्यमानः पुत्री हो यशस्वी किकश्च भवति कामसूत्रम्। बाद में शास्त्र की मर्यादा नष्ट हो गई। इसका मूल प्रयोजन इंद्रिय सुख और परप्राणिक गृहिता के प्रति आसक्ति और व्यभिचार हो गया। इन शास्त्रों में वर्णित नारी सौंदर्य और अंग प्रत्ययों के लक्षण आदि इतने लोकप्रिय हुए कि कवियों ने ज्यों का त्यों ने काव्य विषयक उपकरण के रूप में ग्रहित कर लिया। सौंदर्य चित्रण में तथा नक्षिक वर्णन में कामशास्त्र के लक्षणों का ज्यों का त्यों अपना लिया गया। इतना ही नहीं, कामशास्त्र के रूढ़ भेदापवेदों को नारी के रूप वर्णन के में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। बाला, नवोढ़ा, मुग्धा और प्रौढ़ा आदि के वर्णन में कामशास्त्र के लक्षण काव्य के नियम बनाए गए और इन रूढ़ विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप श्लोक आदि रचे जाने लगे। कामशास्त्र का प्रभाव चित्रकला तथा मूर्तिकला पर भी कम न पड़ा। पवित्र देव मंदिर मिथुन मुद्राओं और आसनों के चित्रों से भर गए। नग्न मूर्तियों का निर्माण श्रेष्ठ कला माना जाने लगा। कामशास्त्र का प्रभाव अमुष्मिका पर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखने वालों पर भी नहीं पड़ा। इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि धार्मिक कवि, स्तुति या स्त्रोत लेखक भी इससे बच न सके। दुर्गा, सरस्वती, राधा, गौरी, लक्ष्मी आदि देवियों की स्तुति में उनके सौंदर्य का चित्रण इन्हीं लक्षणों पर आधारित किया गया। नवोढ़ा और तरुणी के सौंदर्य चित्रण में परिगृहिता उपमान देवियों के सौंदर्य से भी प्रयुक्त होने लगे। बाद में मथुरा भक्ति के मानने वाले वैष्णव कवियों ने भी इसे और भी अधिक महत्व दिया। गीत गोविंद में सर्वप्रथम कामकला और हरिस्मरण को एकत्र कर दिया। जयदेव ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यदि हरिस्मरण सरसम मानो यदि विलास कुलास कोतलम मधुर कोमलांत पदावली ऋणु तदा जयदेव सरस्वतम। गीत गोविंदम श्लोक 3। जयदेव ने हरिस्मरण के साथ साथ कामकला के कोतलों की शांति को भी अपनी कविता का उद्देश्य मान लिया, अर्थात उन्होंने हरि कीर्तन और कामशास्त्र शिक्षा को एक साथ ही स्वीकार किया। जयदेव ने बिना झिझक के दोनों बातें एक साथ से कह दी। उन्हें कामशास्त्र शिक्षा के नाम पर रंग मात्र भी संकोच न हुआ। जयदेव का गीत गोविंद रागानुराग भक्ति संप्रदाय के भक्तों के लिए भागवत की तरह पूज्य है। इस ग्रंथ का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि पूर्ववर्ती काल में कोई भी वैष्णव कीर्तन बिना इसके श्लोक पाठ के शुरू नहीं माना जाता था। जयदेव ने 50% कामकला के साथ 50% हरिस्मरण का संकल्प किया था, पर हुआ क्या? हरिस्मरण का स्मरण क्षीण से क्षीणतर हो गया। हरि के चरणों में निवास करने वाले जयदेव को हरिस्मरण का जैसा ही आनंद मिला हो, पाठकों को तो उसने युवती की कोमल कला की तरह ही आकृष्ट किया। हरिचरण शरण जयदेव कवि भारती वसत छवि युवतरीव कोमल कलावती। जयदेव के लिए उस जनता का पूरा तिरस्कार कर देना असंभव था जो गाथा शतश्री जैसी प्रेम विवल रचनाओं में ही आनंद और मनोरंजन प्राप्त करती थी। जयदेव की यह विशेषता अवश्य है कि उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति में छूटकर ही सही भक्ति का स्रोत भी अनुस्वित कर दिया। विद्यापति पर इस धारा का प्रभाव पड़ा। उन्होंने जयदेव की तरह माधव और राधा के चरणों की वंदना के साथ ही कामशास्त्र की शिक्षा को भी अपना उद्देश्य मान लिया। तत्कालीन कवि वस्तुतः कामशास्त्री की भूमिका अदा करना भी कवि का कर्तव्य समझने लगा था। राधा के रूप चित्रण में विद्यापति ने सामुद्रिक और कामशास्त्र के रूढ़ परीक्षाओं और उपमाओं की राशि एकत्र कर दी। प्रेम के चित्रण के बाद वे यह लिखना नहीं भूलते थे कि यह रस कोई ही जानता है। अरे मूर्खों, राजा शिव सिंह इस रस को जानते हैं, उनसे कुछ डर नहीं, अथवा लखीमा इस रस को जानती है। इतना ही नहीं, कुछ पदमों ने कामकला शिक्षक का बाना भी धारण कर लिया और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विद्यापति कहकर रस ठाठ, भय गुरु काम सिखाओ पाठ, अथवा सुन सुन ये सखी वचन विशेष, आज हम देव तो ही उपदेश। और जब विद्यापति अपना उपदेश देने लगे तो बादशाह और उसकी सारी शिष्य परंपरा दांतों तले उंगली दबाकर खड़ी हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। हम इसके लिए विद्यापति को दोषी नहीं कहते। प्रेम काव्यों की इस परंपरा ने जयदेव के हरिश्रवण को जब कामकला के सामने घुटने टेकने को मजबूर किया, तो विद्यापति जैसे दरबारी कवि जिसने हरिश्रवण का भी संकल्प ही नहीं किया, इस धारा में वह जाए तो आश्चर्य क्या। किंतु यह उनके व्यक्तित्व की एक निर्बलता जरूर है कि वे उस विकासशील संक्रमण काल में अपने को क्षणिक प्रभाव से अलग न कर सके। वे कबीर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु वे मीरा हो सकते थे। विद्यापति ने अपने समय की यथार्थ सामाजिक चेतना को पूर्णतः ग्रहण नहीं किया। लोक चेतना शीर्षक प्रकरण में मैंने इस पर विस्तार से विचार किया है। यहाँ प्रसंगवश इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विद्यापति जैसे दरबारी कवि ने जनजीवन के साथ अपने को संबंध करने का जो कुछ भी प्रयत्न किया और उसमें जितना भी वो सफल हो सके वह कम नहीं है। 14वीं शताब्दी के कवि के लिए भाषा काव्य लिखना ही एक असंभव व्यापार था। 300 वर्ष बाद भी केशवदास ने भाषा में काव्य लिखते वक्त जिस ग्लानि का अनुभव किया था, तुलसीदास जैसे जनमंगल की भावना से उत्प्रेरित कवि ने भाखा भनति के लिए जितनी शालीन सफाई पेश की, वह सब कुछ संभव न हुआ होता यदि विद्यापति जैसे दरबारी कवि ने कविता को देववाणी की दमघोर चार दीवारी से बाहर न निकाला होता। यह सही है कि उन्होंने कबीर की तरह संस्कृत को ऊब जल कहकर तिरस्कृत नहीं किया, किंतु इतना तो वे मानते ही हैं कि संस्कृत अब केवल बुद्ध जन तक ही सीमित हो गई है। सक्कय वाणी बहुजन भावई, पावं रस को मम न पावई, देसिल बयना रस जन मिठा, तत्सहसन जम्पौ अवहट्टा। उन्होंने अपने राजकवि होने की मजबूरी को संस्कृत प्रशस्ति का काव्य लिख कर निभाया। तत्कालीन परंपरा के अनुसार राजा के युद्ध प्रणय का विवरण पिंगल या भट्ट में उपस्थित किया, किंतु हृदय का तगाजा जनता के प्रति उत्तरदायित्व देशिल बैना के माध्यम से व्यक्त हुआ। विद्यापति के गीतों का पाठक इनकी जीवंत प्रभावमय भाषा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। लोक गीतों को सुमधुर और सहज पद्धति पर लिखे गए वे गीत तत्कालीन जनमानस के अकृत्रिम दर्पण हैं। इस प्रकार की चेतना को सामाजिक यथार्थ के प्रति श्रद्धा की भावना के बिना कौन कभी ग्रहण कर सका। इतना ही नहीं, विद्यापति ने बाल विवाह, कुटनी नारी की दीनता, मुसलमानों के आक्रमण से उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था आदि विषयों पर भी बड़ी ईमानदारी के साथ विचार किया है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बाल विवाह आदि समस्याओं पर विचार करने वाले लोगों को हम रिनेसा के अग्रदूत कहते हैं, किंतु कल्पना कीजिए 14वीं शताब्दी के उस युग की जब विदेशी आक्रमण से संतृष्ट हिंदू जाति अपने बचाव के लिए नाना प्रकार की किलेबंदी कर रही थी। बाल विवाह भी उसी युग की देन है, इसमें शक नहीं। विद्यापति ने इस कुरीत को जो तत्कालीन विकट परिस्थिति का परिणाम था क्षम्य नहीं माना और उस पर मार्मिक किंतु शोभहीन ढंग से प्रहार किया। लोक चेतना के प्रति उनका एक आदर एक और रूप में व्यक्त हुआ। हिंदी के अद्यतन कवियों काव्य की एक प्रवृत्ति है लोक तत्व से पाणी ग्रहण की। हम उन कवियों या लेखकों को साधुवाद देते हैं जो जनता के लोकगीतों या लोक कथाओं को अपने काव्य में स्थान देते हैं। लोकगीतों या लोक कथाओं के परिग्रहण में भी कभी कभी गड़बड़ी पैदा होने की आशंका रहती है। लोकगीत या लोक तत्वों का देता जब इन तीनों में जनता के प्रेम या दर्द की सहज निवृत्ति के साथ साथ अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के प्रति व्यक्त भय मिश्रित श्रद्धा को भी चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं, तब लोकगीतों के प्रयोग से स्वस्थ प्रवृत्तियों को शक्ति के स्थान पर बाधा ही मिलती है। लोक तत्वों का प्रयोग शैली और वस्त्र दोनों ही दृष्टियों से काव्य को उन्नयनशील, कृत्रिम, मताहीन तथा जनमानस के साथ संबंध बनाने में सक्षम होता है। उपमाएं, उत्प्रेक्षा तथा अन्य अलंकारों के प्रयोग में लोक तत्व से प्रभावित उपमान ग्रहण किए जा सकते हैं। यही नहीं, कभी कभी लोक तत्वों का परिग्रहण साहित्य की रूढ़ प्रवृत्तियों से प्रभावित विचार सरणी को भी बदलने में सहायक होता है। विद्यापति ने लोक तत्वों के ग्रहण में काफी पटुता और कुशलता का परिचय दिया है। उन्होंने गीतों के छंद, धुन, स्वर तथा शब्द विन्यास आदि लोक जीवन से लिए। साथ ही विरह और संयोग के वर्णनों में भी लोक जीवन की मान्यताओं का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए बालक जन्म के अवसर पर होने वाले टोने टोटके तथा अन्य लौकिक संस्कारों का वर्णन विद्यापति ने वसंत को बालक मानकर उसके जन्म के अवसर पर प्रस्तुत किया। मधुलय मधुकर बालक दय हलु कोमल पंखरि लाय पौनार तोरि सुत बांधल कटि केसरी कैल भगनार। पूजा व्रत आदि के अवसरों पर गाए जाने वाले स्तुति गानों में भी अनेक लोकगीतों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संयोग और वियोग के गीतों में तो विद्यापति ने अभिजात संस्कारों को नीरस समझकर एकदम हटा दिया है। उनके स्थान पर उन्होंने सामान्य प्रेमी प्रेमिका को लोक जीवन में संयुक्त तो प्रेम व्यापार का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। लोकगीत की एक धुन देखिए। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास ये नहीं सहय असह दुख रे भेज साओ ने मास एक सरी भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न जाय सखी अन कर दुख दारुण रे जग के पति याय मोर मन हरि हरि लय गेल रे अपने मन में गेल गोकुल तज मधुपुर वसरे कल तक अपजस लेल विद्यापति कव गाउल रे धनि धरु हि आस आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। ठीक इसी भाव के प्रायः इन्हीं शब्दों के कई गीत भोजपुरी और द्वितान लोक भाषाओं में आज भी चलते हैं। कहीं कहीं तो विद्यापति ने लोकगीत को ज्यों का त्यों रख दिया है। यह हो सकता है कि उन्हीं का लिखा हुआ गीत शुद्ध लोकगीत की तरह प्रिय होने के कारण लोकगीत ही प्रतीत होता है। इन गीतों में दर्द की इतनी तीव्र व्यंजना इसीलिए संभव हो सके कि कवि ने विरहणी के मुख से निकलने वाले शब्दों में नहीं पीड़ा को पहचाना है। विरहणी नायिका छाती फटने की व्यंजना कई शब्दों में भिन्न तरह से करती है, पर मधुपुर मोहन गेल रे मोरा बिहरत छाती गोपी सकल विसरलनि रे जत छल अहिबाती। विहरत की तुलना का दूसरा शब्द मिलना कठिन है। यह ऐसा शब्द है जो दर्द की अंतःशरीरा में जाने कितने समय तक बहते टकराते घिस घिस कर चिकने पत्थर की तरह पारदर्शी हो गया है। इस शब्द में अभिधार्थ से कहीं ज्यादा भाव सन्निहित हो गया है। लोकगीत कभी भी निराशावादी प्रवृत्तियों का प्रश्न नहीं देते। विरहणी नारी के दुख को कभी समझता है, इसलिए लोकगीतों की आशावादी प्रवृत्ति के अनुकूल ही वह प्रत्येक पद में कहता है कि धनी तो अपने हृदय में धैर्य धारण कर तेरे प्रिय शीघ्र आएंगे या इस कार्तिक मास में ही आ जाएंगे आदि आदि। विद्यापति पूर्णतः गीतात्मक व्यक्तित्व के पुरुष थे। संगीतमयता और अपने व्यक्तित्व को गीतों में लय करने की तन्मयता विद्यापति के नैसर्गिक गुण है। उन्होंने संस्कृत और अवहट्ट की कतिपय रचनाओं में प्रबंधकार कवि के कौशल का परिचय भी दिया है। किंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, यह दरबारी कवि के उत्तरदायित्व का निर्वाह मात्र है। विद्यापति का व्यक्तित्व केवल गीतों में व्यक्त हो सकता था। ऐसा व्यक्तित्व जो सौंदर्य की भाव लहरियों से स्पंदित था, प्रेम बांसुरी की जड़ी भूत कारणी माधुरी से प्लावित था तथा जो विरह के चंपा की तीखी गंध से व्याकुल या केवल अपने को लघु लघु गीतों से व्यक्त कर सकता था। दंडनीत के पंडित बहु परिक्रमा के लेखक के व्यक्तित्व में विचार कर्कशता और तर्क का परुषता अवश्य थी, किंतु उस समय व्यक्तित्व का हृदय नहीं कलेवर है जिसकी रुक्षता और उत्तप्तता के बीच उनके हृदय की सरस भावधारा सुरक्षित रही। विद्यापति की राधा वसंत सौंदर्य का स्तबक है। इकारे भाव चित्रों की चित्रपटी है। वह एक ऊंची रुचि के कलाकार के तुलिका से निर्मित चित्रों का एल्बम है। उसमें अजंता के भित्ति चित्रों का गंभीर और विशालता ने उसमें खजुराव और भुवनेश्वर के मंदिरों में निर्मित मिथुन नर नारी के खंडित व्यक्तित्व के छायांकन का प्रभाव है। विद्यापति के गीतों में एक क्षण को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न है। एक ऐसा क्षण जो अपनी लघु स्थिति में जीवन की समग्रता का पूरा आभास तो नहीं दे सकता, किंतु जो जीवन के किसी एक हिस्से को सदा के लिए उद्भाषित करने के लिए समर्थ होता है। प्रबंधकार कभी जीवन का पूरा चित्रण इसी क्षण की अनुभूति को प्रस्तुत करने के लिए किया करता है, जबकि विद्यापति उस क्षण में ही जीवन देख लेने के अभ्यासी हैं। उनके गीत शबनम की बूंदों की तरह दिव्य और पारदर्शी हैं, किंतु उन्हीं की तरह उनका अस्तित्व भी केवल रुचि संपन्न हृदयों में ही हो सकता है। विद्यापति का प्रभाव परवर्ती काल पर कई रूपों में पड़ा। अपनी मानव अनुभूति और देशकाल निरपेक्ष कलाधारित कलाकारिता के पल पर उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिसने भक्तों को वैष्णवी भक्ति का सुमधुर गान दिया, रसिकों को कलापूर्ण प्रणय की भावभंगिमा, असंख्य विरही जनों के कांता विश्लेष दुख से पीड़ित मन को संभालने की ताकत, युवकों को नारी का मादक मांस और सौंदर्य तथा वृद्धों को अपने जीवन के अंतिम काल में आत्मग्लानिपूर्ण मन में ईश वंदना के लिए स्तुतियां प्रदान की। डॉक्टर सुभद्र झा ने लिखा है कि विद्यापति का प्रभाव तुलसीदास से ही व्यापक है, क्योंकि उनके पाठक केवल हिंदी क्षेत्र के ही लोग नहीं बल्कि असम, बंगाल और उड़ीसा के भी हैं। तुलसीदास का प्रभाव कुछ भिन्न तरह का है। यह प्रभाव धर्म के नियमों की तरह बुद्धिगम्य है। संसार के दुखों से आकुल जन के लिए तुलसीदास शास्त्र के किंतु सहृदय धर्मगुरु हैं। विद्यापति भिन्न है, उनकी कविता हृदय को चेतावनी नहीं प्यार देती है। विद्यापति के गीतों की शैली निराली है। विद्यापति की कविता ने असम और बंगाल के ब्रजबोली की कवियों को न केवल प्रभावित किया बल्कि इस प्रकार के काव्य लिखने का आदर्श और प्रेरणा भी बनी रही। इसने पिछले खेवे की ब्रजभाषा कवियों को प्रभावित नहीं किया, ऐसा कुछ एक विद्वान मानते हैं, किंतु ब्रजभाषा कविता के विकास में बंगाली गोस्वामियों का प्रभाव कम न था। चैतन्य के वृंदावन आगमन के समय ने केवल रागानुगा भक्ति के अनंत व्यापन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, साथ ही गीत गोविंद के श्लोक और विद्यापति के पद भी जो महाप्रभु को बहुत प्रिय थे वृंदावन आए। उसके साथ ही विद्यापति से प्रभावित कितने संत वृंदावन आ चुके थे। रूप गोस्वामी, शंकर देव आदि संत विद्यापति से अपरिचित न थे। विद्यापति के संबंध में ग्रियशन की यह श्रद्धांजलि उचित ही है। इनवर्टेड कामा, हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्ण से विश्वास और श्रद्धा का अभाव हो। कृष्ण प्रेम की स्थितियों के प्रति जो हमारे लिए इस भवसागर के रूप की दवा है, विश्वास जाता रहा है तो भी विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और प्रेम कभी कम न होगा। इन्होंने कहा बंद।